नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नॉट थ्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, आफ्टर इफेक्ट्स अप्रेंटिस। क्रिस मेयर और ट्रिश मेयर की व्यावहारिक प्रशिक्षण पुस्तक है, जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स में मोशन ग्राफिक्स और विजुअल इफेक्ट्स बनाने की बुनियादी से मध्यवर्ती कार्यप्रणालियां सिखाती है। इसका चौथा संस्करण आफ्टर इफेक्ट्स सीसी की प्रमुख सुविधाओं के अनुरूप अद्यतन किया गया है। पुस्तक का उद्देश्य केवल बटन, पैनल और इफेक्ट्स की सूची समझाना नहीं, बल्कि उन निर्णयों को स्पष्ट करना है जिनसे अलग अलग मीडिया तत्व एक सुसंगत, नियंत्रित और पेशेवर दृश्य रचना में बदलते हैं। 12 मुख्य पाठों के माध्यम से पाठक एनिमेशन, लेयरिंग, कंपोजिटिंग, टेक्स्ट, शेप लेयर्स, मास्किंग, ट्रैकिंग, कीइंग और त्रि आयामी स्पेस के प्रयोग को परियोजना आधारित ढंग से सीखता है। इसमें सिनेमा 4D लाइट के साथ काम करने वाले अभ्यास भी शामिल है। साथ दी गई वेबसाइट पर अभ्यास सामग्री और प्रोजेक्ट फाइलें उपलब्ध कराई गई है, इसलिए यह पुस्तक पढ़ने के साथ करके सीखने पर केंद्रित संसाधन बनती है। इसका स्तर नवशिक्षु से मध्यवर्ती उपयोगकर्ता तक के लिए उपयुक्त है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, 12 पाठों की संरचना सॉफ्टवेयर परिचय को उत्पादन कौशल में बदलती है। पुस्तक की केंद्रीय विशेषता इसकी 12 पाठ वाली क्रमिक संरचना है। आफ्टर इफेक्ट्स जैसे व्यापक सॉफ्टवेयर को केवल उपकरणों की सूची के रूप में सीखने पर उपयोगकर्ता अक्सर इफेक्ट तो लगा लेता है, पर शॉट, कंपोजिशन और एनिमेशन के बीच संबंध नहीं बना पाता। मेयर दंपति का ढांचा इस समस्या को उत्पादन केंद्रित अभ्यासों से संबोधित करता है। पाठक मीडिया आयात करने, उसे संपादित करने, लेयर्स में व्यवस्थित करने और अंतिम कंपोजिट तैयार करने के क्रम में आगे बढ़ता है। इस क्रम का व्यावहारिक महत्व यह है कि हर तकनीक को उसके उपयोग के संदर्भ में रखा जाता है। उदाहरण के लिए, लेयरिंग केवल दृश्य क्रम नहीं है, बल्कि यह तय करती है कि कौन सा तत्व दिखाई देगा, किसके पीछे रहेगा और किन इफेक्ट्स या मास्कों से प्रभावित होगा। पुस्तक नवशिक्षु को इंटरफेस की जटिलता से सीधे पेशेवर परिणामों की अपेक्षा तक नहीं धकेलती। वहीं पहले से उपयोग कर रहे पाठकों के लिए यह अलग अलग फीचरों को एक संगठित वर्कफ्लो में रखने का अवसर देती है। इस कारण पाठों का मूल्य किसी एक संस्करण के मेनू याद कराने से अधिक काम को चरणों में सोचने की आदत विकसित करने में है। दूसरा, की फ्रेम और इंटरपोलेशन से गति को नियंत्रित और विश्वसनीय बनाना। मोशन ग्राफिक्स में वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पर्याप्त नहीं होता। गति की शुरुआत, रुकने का ढंग, त्वरण, मंदन और लय ही दर्शक को गति का भाव समझाते हैं। पुस्तक की फ्रेमों और उनके इंटरपोलेशन के माध्यम से इसी नियंत्रण पर जोर देती है। कीफ्रेम किसी गुण जैसे स्थिति, स्केल, घुमाव या अपारदर्शिता के निश्चित समय पर मान तय करते हैं, लेकिन दो कीफ्रेमों के बीच बदलाव किस गति से होगा, यह एनिमेशन की गुणवत्ता बदल देता है। रैखिक बदलाव अक्सर यांत्रिक दिख सकता है, जबकि नियंत्रित इंटरपोलेशन प्रवेश, ठहराव और निकास को अधिक स्वाभाविक या उद्देश्यपूर्ण बना सकता है। यह विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ही दृश्य सामग्री गलत टाइमिंग के कारण, साधारण और सही गति वक्रों के कारण स्पष्ट तथा प्रभावी लग सकती है। पुस्तक इस तकनीक को केवल तकनीकी नियंत्रण के रूप में नहीं रखती, बल्कि अभिव्यक्ति के उपकरण के रूप में प्रस्तुत करती है। शीर्षक, लोगो, इन्फोग्राफिक और स्क्रीन आधारित ग्राफिक्स में गति दर्शक का ध्यान निर्देशित करती है। इसलिए कीफ्रेम नियंत्रण सीखने का लाभ यह है कि पाठक तैयार प्रीसेट पर निर्भर रहने के बजाय अपनी दृश्य मंशा के अनुसार एनिमेशन को परिष्कृत कर सकता है। तीसरा, मास्क, मैट, स्टेंसिल और ब्लेंडिंग मोड से परतदार कंपोजिटिंग। पुस्तक में मास्क, मैट, स्टेंसिल और ब्लेंडिंग मोड को इमेजरी में गहराई और चयनात्मक दृश्य नियंत्रण जोड़ने वाले उपकरणों के रूप में रखा गया है। कंपोजिटिंग का मूल प्रश्न यह है कि अलग स्रोतों से आए टेक्स्ट, फोटो, वीडियो, ग्राफिक्स और प्रभावों को एक ही फ्रेम में विश्वसनीय ढंग से कैसे जोड़ा जाए। मास्क किसी लेयर के चुने हुए भाग को छिपाने या दिखाने देता है। मैट एक लेयर की चमक या अपारदर्शिता के आधार पर दूसरी लेयर की दृश्यता नियंत्रित कर सकता है। यह टेक्स्ट के भीतर वीडियो दिखाने या किसी आकार के अनुसार चित्र प्रकट करने जैसे कामों में उपयोगी है। स्टेंसिल और ब्लेंडिंग मोड लेयर्स के पारस्परिक संबंध को बदलते हैं, जिससे रंग, प्रकाश और बनावट को साधारण ओवरलैप से आगे ले जाया जा सकता है। इन तकनीकों की उपयोगिता उनके अलग अलग नाम याद रखने में नहीं, बल्कि दृश्य समस्या पहचानने में है। यदि किसी वस्तु को पृष्ठभूमि में मिलाना है, किसी शीर्षक को छवि के भीतर सीमित रखना है या रोशनी और टेक्सचर को दृश्य के साथ संवाद कराना है, तो सही लेयर संबंध चुनना आवश्यक होता है। पुस्तक पाठक को यही समझ देती है कि कंपोजिटिंग प्रभावों का ढेर नहीं, नियंत्रित दृश्य प्राथमिकता और परतों की तर्कपूर्ण व्यवस्था है। चौथा, टेक्स्ट, शेप लेयर्स और त्रि आयामी स्पेस का एकीकृत प्रयोग। आफ्टर इफेक्ट्स का उपयोग अक्सर गतिशील टाइपोग्राफी, प्रसारण ग्राफिक्स और ब्रांड पहचान वाले दृश्यों के लिए किया जाता है। पुस्तक टेक्स्ट और शेप लेयर्स को एनिमेट करने के साथ उन्हें त्रिआयामी स्पेस में रखने की क्षमता पर चर्चा करती है। टेक्स्ट केवल सूचना नहीं होता, उसका प्रवेश, आकार, क्रम और फ्रेम के भीतर स्थान संदेश की स्पष्टता को प्रभावित करते हैं। शेप लेयर्स वेक्टर आधारित रूपों के कारण साफ किनारों और लचीले एनिमेशन का आधार प्रदान करती है। इनके माध्यम से रेखाएं, बॉक्स, आइकन सदृश रूप और ग्राफिक ट्रांजिशन बनाए जा सकते हैं। त्रिआयामी स्पेस जोड़ने पर दूरी, परिप्रेक्ष्य और कैमरा आधारित फ्रेमिंग की नई संभावनाएं खुलती है। हालांकि त्रिआयामी विकल्प का अर्थ स्वतः बेहतर डिजाइन नहीं है। इसका उचित प्रयोग तभी है जब गहराई, कैमरा मूवमेंट या वस्तुओं के स्थानिक संबंध से संचार बेहतर हो। पुस्तक में सिनेमा 4D लाइट के साथ 3 परियोजनाएं शामिल होने से पाठक को आफ्टर इफेक्ट्स की कंपोजिटिंग क्षमता और त्रिआयामी सामग्री के संबंध का परिचय मिलता है। यह संयोजन विशेष रूप से उपयोगी है क्योंकि आधुनिक मोशन डिजाइन में द्विआयामी ग्राफिक्स और त्रिआयामी तत्व अक्सर एक ही दृश्य भाषा का हिस्सा होते हैं। अंत में ट्रैकिंग और कीइंग से स्क्रीन प्रतिस्थापन तथा दृश्य प्रभावों की विश्वसनीयता। ट्रैकिंग और कीइंग पुस्तक के उन विषयों में है जो मोशन ग्राफिक्स को लाइव एक्शन फुटेज के साथ जोड़ने की दिशा देते हैं। ट्रैकिंग का उपयोग किसी फुटेज में मौजूद गति या स्थिति की जानकारी लेकर नए ग्राफिक, टेक्स्ट या दृश्य तत्व को उसी के अनुरूप चलाने में किया जाता है। मसलन किसी चलती स्क्रीन पर नया डिस्प्ले रखना हो तो जोड़ा गया चित्र कैमरे या वस्तु की गति से असंबद्ध नहीं दिखना चाहिए। ट्रैकिंग इस संबंध को स्थापित करने का आधार देती है। कीइंग में किसी खास रंग या पृष्ठभूमि को हटाकर विषय को दूसरी पृष्ठभूमि पर रखा जाता है। इसका परिचित प्रयोग ग्रीन स्क्रीन फुटेज है, पर संतोषजनक परिणाम के लिए किनारों, पारदर्शिता, रंग प्रदूषण और मूल फुटेज की रोशनी पर ध्यान देना पड़ता है। पुस्तक इन प्रक्रियाओं को विशेष प्रभाव बनाने की व्यावहारिक क्षमता से जोड़ती है, न कि केवल एक क्लिक समाधान के रूप में। इनके पीछे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि जोड़ा गया तत्व दृश्य की गति, किनारों, रंग और प्रकाश के साथ मेल खाए। इसलिए ट्रैकिंग और कीइंग सीखना केवल तकनीकी सुविधा नहीं, कंपोजिट को दर्शक के लिए विश्वसनीय बनाने की दिशा में आवश्यक कदम है। कॉर्पोरेट वीडियो, उत्पाद प्रदर्शन, शीर्षक अनुक्रम और प्रसारण सामग्री में इन कौशलों का सीधा उपयोग हो सकता है। निष्कर्ष में, आफ्टर इफेक्ट्स अप्रेंटिस उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो आफ्टर इफेक्ट्स को पहली बार व्यवस्थित ढंग से सीखना चाहते हैं या जो बुनियादी परिचय के बाद अपने काम को अधिक नियंत्रित और पेशेवर बनाना चाहते हैं। यह विशेष रूप से मोशन ग्राफिक्स डिजाइनरों, वीडियो संपादकों, संचार टीमों, विद्यार्थियों और स्वतंत्र रचनाकारों के लिए प्रासंगिक है। पाठक को एनिमेशन की टाइमिंग, लेयर प्रबंधन, कंपोजिटिंग, टेक्स्ट आधारित ग्राफिक्स, त्रिआयामी एकीकरण और स्क्रीन प्रतिस्थापन जैसे कामों की कार्यशील समझ मिलती है। पुस्तक का प्रमुख लाभ यह है कि यह सॉफ्टवेयर की सुविधाओं को अलग अलग कमांडों की तरह नहीं छोड़ती, बल्कि उन्हें वास्तविक निर्माण प्रक्रिया से जोड़ती है। अभ्यास सामग्री और प्रोजेक्ट फाइलों की उपलब्धता इस दृष्टिकोण को और उपयोगी बनाती है क्योंकि पाठक परिणाम देखने के साथ उसके निर्माण को दोहरा सकता है। समान श्रेणी की संदर्भ पुस्तकों की तुलना में इसका अंतर लेखकों का दीर्घकालिक मोशन ग्राफिक्स अनुभव और चरणबद्ध शिक्षण पर जोर है। फिर भी यह संस्करण आफ्टर इफेक्ट्स CC युग के अनुरूप लिखा गया था, इसलिए नवीनतम सॉफ्टवेयर इंटरफेस या हाल में जोड़ी गई सुविधाओं के लिए पाठक को अद्यतन स्रोतों की सहायता लेनी पड़ सकती है। इसके बावजूद एनिमेशन, कंपोजिटिंग और दृश्य निर्णयों के मूल सिद्धांत स्थायी है, इसलिए यह पुस्तक केवल शुरुआती मार्गदर्शिका नहीं बल्कि सोच समझकर मोशन ग्राफिक्स बनाने की आधारभूत कार्यपुस्तिका के रूप में मूल्य रखती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं क्रिस मायर, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।